एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञानोगोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में झांक रहे हैं जिसने सच में दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को छुआ है।
हाँ बिल्कुल, फ्रैंक मैककॉर्ट की आत्मकथा एंजेलाज एशेज, अ मेमोर,
1996 में आई थी ये।
और सिर्फ एक किताब नहीं, इसे तो पुलित्ज़र पुरस्कार भी मिला। ये आयरलैंड की गरीबी और कह सकते हैं इंसानी जज्बे की कहानी है।
एकदम सही, और इसके लेखक फ्रैंक मैककॉर्ट खुद भी बड़े दिलचस्प इंसान थे। 1930 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जन्म हुआ, माता पिता आयरलैंड से आए अप्रवासी थे।
अच्छा,
जिंदगी शुरुआत बहुत मुश्किलों में हुई, भयंकर गरीबी देखी, फिर अमेरिका में करीब 30 साल पढ़ाया, टीचर रहे, और फिर 60 साल की उम्र के बाद इस किताब ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। 60 साल के बाद, ये तो वाकई सोचने वाली बात है, पर सवाल यह है कि उनकी ये कहानी आज के समय में भी इतनी अहम क्यों है, मतलब हमें क्यों जानना चाहिए उनके बारे में?
मुझे लगता है कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि कहानी दिखाती है कि कैसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते वैसी गरीबी, पारिवारिक दुख, उसके बीच भी इंसान उम्मीद रख सकता है, हास्य ढूंढ सकता है,
गरिमा बनाए रख सकते हैं।
हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ किसी तरह गुजारा करने की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी हौसले की जीत की कहानी है।
और शायद ये गरीबी, पहचान, अपनी जड़ों से जुड़े जो सवाल होते हैं ना, उनको भी बहुत ईमानदारी से लगती है सामने।
निश्चित रूप से ये किताब हमें आयरलैंड में जो महामंदी का दौर था, उसकी ज़िंदगी कैसी थी, उसका एक कच्चा चिट्ठा देती है। वहाँ की जो सामाजिक ऊंच नीच थी, धार्मिक दिखावा था, परिवारों के अंदर के झगड़े, सब कुछ खुलकर बताया है। में कोई मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो बात कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ती है।
तो चलिए फिर फ्रैंक मैककॉर्ट की इस अनोखी जीवन यात्रा को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। उनका जन्म, जैसा आपने बताया, 1930 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ। महामंदी का दौर था वो।
हाँ, बहुत मुश्किल वक्त था। उनके पिता मालकी मैककॉर्ट सीनियर उत्तरी आयरलैंड से थे तो बड़े दिलचस्प आदमी, कहानियां खूब सुनाते थे, लेकिन शराब की लत ऐसी थी कि उन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता था।
और माँ?
माँ एंजेला शीहान मैककॉर्ट लिमरिक शहर से थीं। बहुत मजबूत इरादों वाली थीं, पर हालात के आगे अक्सर मजबूर हो जाती थीं। अमेरिका में शुरुआती साल तो बस गरीबी, एक घर से दूसरे घर भटकना, इसी में बीते।
और फिर एक बहुत बड़ा सदमा लगा परिवार को जब फ्रैंक सिर्फ 4 साल के थे, उनकी छोटी बहन मार्गरेट की मौत हो गई।
हाँ, और इस घटना का परिवार पर बहुत गहरा असर पड़ा। पिता की शराब की लत और बढ़ गई, घर की हालत और बिगड़ गई। इसी निराशा में, और शायद ये सोचकर कि अमेरिका में कुछ नहीं रखा है, 1934 में परिवार ने आयरलैंड वापस जाने का फैसला किया, लिमरिक, जहां एंजेला का मायका था।
उन्हें लगा होगा शायद वहां कुछ बेहतर होगा।
हाँ, शायद यही उम्मीद थी, लेकिन आयरलैंड में, लिमरिक में, हालत तो और भी ज्यादा खराब निकली। वहां तो गरीबी और भी भयानक थी। लिमरिक में वो रोडन लेन नाम की एक बहुत ही तंग, गंदी सी गली में रहने लगे। घर ऐसा कि हर वक्त नमी, सीलन, बारिश होती तो नीचे का पूरा कमरा पानी से भर जाता था।
हाँ, मैंने पढ़ा है बच्चे उसे मजाक में आयरलैंड कहते थे।
हाँ, और ऊपर का सूखा हिस्सा जहां सब सोने के लिए सिकुड़ जाते थे, वो था इटली।
ये मजाक भी कितना दुख भरा है, मतलब अपनी ऐसी हालत पर भी हंस लेना, ये शायद उनका तरीका था झेलने का। पिस्सू, चूहे, गंदगी, ये सब रोज की बात थी।
ओलिवर और यूजीन, उनकी भी बचपन में ही मौत हो गई। 7 बच्चे थे उनके, जिनमें से सिर्फ 4 भाई ही बच पाए।
उफ़, तो ये लगातार मौतें, ये कमी, इसने फ्रैंक के बचपन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी।
हर वक्त भूख का एहसास, फिर वो कैथोलिक धर्म का सख्त अनुशासन, और उसके साथ जुड़ा हुआ अपराध बोध, शर्म, ये सब।
लेकिन इसी अंधेरे में शायद कोई रोशनी की किरण भी थी, कहानियों की दुनिया, साहित्य।
हाँ, वो थी। उनके पिता चाहे जैसे भी थे, बच्चों को आयरलैंड की लोक कथाएं, देशभक्ति की कहानियां सुनाते थे। फ्रैंक को शायद वहीं पहली बार शब्दों की, कल्पना की ताकत का अंदाजा हुआ। किताबें धीरे धीरे उनके लिए एक शरण जैसी बनने लगी।
इन मुश्किल हालात में स्कूल जाना कैसा रहा? लीमी नेशनल स्कूल में पढ़ते थे वो।
लीमी स्कूल में अनुशासन बहुत कड़ा था, खासकर जो क्रिश्चियन ब्रदर्स पढ़ाते थे, उनका रवैया काफी सख्त था। लेकिन हाँ, वहीं फ्रैंक का साहित्य से पहला औपचारिक परिचय हुआ। कुछ टीचर थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना भी।
पर भेदभाव भी झेलना पड़ा होगा गरीबी की वजह से।
बहुत। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया जाता था। इसी बीच उनकी आंखों में भी एक सीरियस इन्फेक्शन हो गया, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ा।
और फिर वो मोड़ आया जब फ्रैंक करीब 13 साल के थे। पिता ने परिवार को छोड़ दिया हमेशा के लिए।
हाँ, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। मलाकी सीनियर काम की तलाश में इंग्लैंड गए। वादा किया कि पैसे भेजेंगे, पर पैसे कभी नहीं आए। वो एक तरह से परिवार को छोड़कर ही चले गए थे। इस घटना ने फ्रैंक का बचपन जैसे खत्म ही कर दिया।
13 साल की उम्र में घर की जिम्मेदारी आ गई। पिता के लौटने की या सुधरने की अब कोई उम्मीद नहीं रही थी।
बिल्कुल, अब फ्रैंक को ही घर चलाने वाला बनना पड़ा। उन्होंने कई तरह के छोटे मोटे काम किए, कोयला ढोया, फल बेचे और एक अजीब सा काम भी किया। मिसेस फिनुकेन नाम की एक लोकल सूदखोर थी।
हाँ।
उसके लिए उन लोगों को धमकी भरे खत लिखना जो कर्ज नहीं चुका पाते थे।
ये तो बड़ा अजीब अनुभव रहा होगा। मतलब जो लिख पढ़ सकते थे उसी का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए करना पड़ रहा था।
हाँ, उनके लिए ये नैतिक तौर पर बहुत मुश्किल था। हम इस पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने टेलीग्राम बॉय का काम भी किया। उससे उन्हें लिमरिक शहर के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग तरह के लोगों को करीब से देखने का मौका मिला। अमीर, गरीब, पाखंडी, दयालु, सब तरह के लोग।
लेकिन उनकी जो असली पढ़ाई थी वो शायद स्कूल के बाहर हो रही थी, लाइब्रेरी में।
निश्चित रूप से उनकी असली यूनिवर्सिटी तो लिमरिक की पब्लिक लाइब्रेरी ही बनी। वहां उन्होंने शेक्सपियर, डिकेंस, स्विफ्ट, न जाने कितने लेखकों को पढ़ डाला। किताबें उनके लिए सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो भूख से, ठंड से, निराशा से बचने का एक मानसिक ठिकाना थी।
और वहीं से अमेरिका लौटने का सपना और पक्का हुआ होगा।
बिल्कुल, वहीं उन्होंने एक बेहतर भविष्य का सपना देखा और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी। 19 साल की उम्र तक पैसे जमा करने के लिए हर तरीका अपनाया। हालात इतने बुरे थे कि कभी कभी खाना या पैसे चुराने तक की नौबत आ गई।
और आखिरकार 1949 में वो अमेरिका वापस पहुंच गए।
19 साल के थे तब।
हाँ, और ये उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर था। अमेरिका पहुंचकर वो सेना में भर्ती हो गए। उन्हें जर्मनी भेजा गया जहां उन्होंने क्लर्क का काम किया। सेना के इस अनुभव ने उन्हें दुनिया भी दिखाई और उनके लिखने के हुनर को भी थोड़ा मांझा।
और सेना से ही उन्हें वो क्या कहते हैं, GI बिल का फायदा मिला।
हाँ, GI बिल ये अमेरिकी सरकार की योजना थी जिससे पूर्व सैनिकों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए मदद मिलती थी। इसने फ्रैंक के लिए आगे की पढ़ाई के दरवाजे खोल दिए
और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी NYU में एडमिशन लिया। हाँ, वहाँ उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, मास्टर्स डिग्री ली। जरा सोचिए, लिमरिक की उन गलियों से निकलकर NYU तक पहुँचना, कितना बड़ा सफ़र था ये।
सच में। और इसके बाद शुरू हुआ उनका लंबा टीचिंग करियर। करीब 30 साल न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई। मैनहट्टन का वो मशहूर स्ट्यूएसेंट हाई स्कूल भी शामिल था उसमें।
और पढ़ाते हुए भी वो अपनी कहानी सुनाने की कला को निखारते रहे। अपने स्टूडेंट्स को अपने जिंदगी के किस्से सुनाते थे, उन्हें प्रेरित करते थे।
और फिर रिटायरमेंट के बाद 66 साल की उम्र में उन्होंने उन किस्सों को किताब की शक्ल दी और दुनिया को मिली एंजेलाज एशेज।
बिल्कुल, 1996 में जब ये किताब छपी तो जैसे एक धमाका हुआ। आलोचकों ने बहुत सराहा, पढ़ने वालों ने हाथों हाथ लिया। 1997 में पुलित्ज़र प्राइज़ मिला, इंटरनेशनल बेस्टसेलर बनी।
40 लाख से ज़्यादा कॉपीज बिकी, फिल्म भी बनी इस पर।
हाँ, एक सफल फिल्म भी बनी। इस एक किताब ने उन्हें रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया। वो फुल टाइम राइटर और स्पीकर बन गए। इसके बाद दो और किताबें लिखी उन्होंने, टिस जो अमेरिका में उनके शुरुआती सालों की कहानी है और टीचर मैन जो उनके टीचिंग के अनुभवों पर है।
2009 में उनका निधन हो गया, लेकिन वो एक ऐसी कहानी छोड़ गए जो शायद कभी भुलाई नहीं जाएगी।
बिल्कुल, ये तो थी उनके जीवन की कहानी, उतार चढ़ाव भरी। लेकिन इस कहानी के पीछे उनके सोचने का तरीका क्या था, उनके मूल्य क्या थे, इस मुश्किल सफर से उन्होंने क्या सीखा और हमें क्या सिखाया, अगर हम उनके नजरिए को, उनके दर्शन को समझने की कोशिश करें तो क्या पाते हैं।
देखिए, उनका जो दुनिया को देखने का नजरिया था वो उनके अनुभवों से बना था। खासकर वो जो कैथोलिक चर्च की बातें थीं और लिमेरिक की जो असलियत थी, जो बहुत बेरहम थी, उसके बीच का जो टकराव था, धर्म को लेकर उनका रवैया बड़ा मिला जुला था। उसमें श्रद्धा भी थी, थोड़ी हंसी उड़ाने वाली बात भी थी और शक भी गहरा था।
वो देख रहे थे कि चर्च सिखाता कुछ और है और चर्च के लोग करते कुछ और हैं।
और उनकी एक खास पहचान जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, वो मुश्किल हालात में भी हंसी मजाक ढूंढ लेने की आदत थी, वो जिसे गैलोज ह्यूमर कहते हैं।
हाँ बिल्कुल, मतलब फांसी के तख्ते पे भी मुस्कुरा देना, ये उनके लिए सिर्फ बचने का तरीका नहीं था, बल्कि दुनिया को देखने का एक चश्मा था। वो भयानक गरीबी, भूख, मौत, इन सब के बीच भी जिंदगी की जो अजीबोगरीब बातें होती हैं उन पर हंस लेते थे, जैसे घर में बाढ़ आने पर आयरलैंड और इटली कहना।
ये दिखाता है कि वो मानते थे कि दुनिया अक्सर अन्यायपूर्ण है, अजीब है, और बड़ी संस्थाओं पर, चाहे वो चर्च हो या सरकार, हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल, जिंदा रहने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, यही उनका मानना था।
तो व्यवहारिकता और हास्य, ये उनके हथियार थे। और किन चीजों पर उनका गहरा यकीन था?
कहानी कहने की ताकत पर। उनके लिए अपनी कहानी सुनाना सिर्फ पुरानी बातें याद करना नहीं था, वो अपने होने को, अपने वजूद को मायने देना था, अपने अनुभवों को समझना था। ये एक तरह से उनके लिए नैतिक दिशा दिखाने जैसा था, जिसने उन्हें कड़वाहट और नफरत में डूबने से रोका।
और प्रामाणिकता, अपनी सच्चाई को जस का तस कहना।
हाँ, वो बहुत जरूरी था उनके लिए, बिना किसी लाग लपेट के।
और शिक्षा का क्या? लाइब्रेरी और किताबों ने तो जैसे उन्हें एक नई जिंदगी दी थी।
बिल्कुल, शिक्षा और साहित्य की जो बदलने वाली ताकत है, उसमें उनका गहरा विश्वास था। उन्होंने खुद महसूस किया था कि किताबें और ज्ञान आपको आपकी मौजूदा हालत से कैसे ऊपर उठा सकते हैं, कम से कम दिमागी और जज्बाती तौर पर तो जरूर। उनके लिए जानने की इच्छा रखना, वो बौद्धिक जिज्ञासा सिर्फ एक शौक नहीं थी, वो जिंदा रहने का एक जरिया थी, एक लाइफ जैकेट की तरह।
उन्हें किस चीज से प्रेरणा मिलती थी? क्या चीज थी जो उन्हें आगे बढ़ाती रही?
सबसे बड़ी प्रेरणा तो शायद वहां से निकलने की इच्छा थी, लिमरिक की गरीबी से, उस समाज के दायरे से बाहर निकलने की इच्छा जिसने उन्हें हमेशा छोटा महसूस कराया। वो अपनी हालत बदलना चाहते थे,
और शायद अपनी कहानी कहकर वो उन जैसे लाखों लोगों की आवाज भी बनना चाहते थे जो हाशिए पर हैं।
हाँ, ये भी एक बहुत अहम बात है। वो अपने जैसे उन अनगिनत लोगों के अनुभवों को दुनिया के सामने रखना चाहते थे, जिनकी कहानियां अक्सर कोई सुनता नहीं। अपनी कहानी लिखकर वो न सिर्फ अपने अतीत को समझने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि उसे एक बड़े मानवीय संदर्भ में रख रहे थे, उसे एक मतलब दे रहे थे।
तो अगर हम संक्षेप में देखें कि वो मुश्किलों का सामना कैसे करते थे, तो हास्य एक ढाल की तरह था।
हाँ,
शिक्षा और पढ़ना एक तरह का मानसिक पलायन भी था और भविष्य की तैयारी भी,
और साथ ही एक खास तरह की उम्मीद। ये कोई ऐसी वैसी उम्मीद नहीं थी, बल्कि बहुत यथार्थवादी उम्मीद थी। वो अपनी मुश्किलों को अच्छी तरह समझते थे, पर फिर भी एक बेहतर कल की उम्मीद रखते थे और उसके लिए लगातार कोशिश करते रहे। इसे कह सकते हैं भ्रम के बिना आशा, मतलब हालात कितने भी खराब हों, हिम्मत नहीं हारना, लेकिन ख्याली पुलाव भी नहीं पकाना।
चलिए अब उन खास घटनाओं पर आते हैं जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। बहुत से मोड़ आए होंगे, लेकिन अगर हम तीन सबसे अहम मोड़ चुने तो वो कौन से थे?
पहला सबसे जरूरी मोड़ तब आया जब फ्रैंक सिर्फ 10 साल के थे, उन्हें टाइफॉइड हो गया।
ओह, ये तो बहुत गंभीर बीमारी है।
हाँ, जानलेवा थी उस जमाने में। उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा। वहीं उनकी मुलाकात पेट्रिशिया मेडिगेन नाम की एक लड़की से हुई। वो भी मरीज थी, पेट्रिशिया भी बहुत बीमार थी, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक था।
और उसी ने फ्रैंक को शेक्सपियर पढ़कर सुनाया था, है ना?
हाँ, फ्रैंक ने पहले कभी शेक्सपियर नहीं पढ़ा था। पेट्रिशिया ने उन्हें कविताएं सुनाई, शेक्सपियर के नाटक सुनाए। ये फ्रैंक के लिए जैसे एक पर्दा हटने जैसा था। उन्हें पहली बार भाषा की खूबसूरती, उसकी ताकत का एहसास हुआ। कल्पना की एक पूरी नई दुनिया खुल गई उनके सामने।
लेकिन पेट्रिशिया बच नहीं पाई।
नहीं, दुखद रूप से उनकी मौत हो गई। लेकिन सीमस नाम का एक अस्पताल का कर्मचारी था, वो फ्रैंक को किताबें लाकर देता रहा।
तो ये सिर्फ बीमारी से ठीक होना नहीं था, ये तो एक तरह का दिमागी और जज्बाती जागरण था।
बिल्कुल, इसी अनुभव ने साहित्य के लिए उनके प्यार की नींव डाली। इसने उन्हें दिखाया कि जिंदगी सिर्फ भूख और कमी का नाम नहीं है, कल्पना और ज्ञान में एक तरह की आजादी है जो बाहरी हालात से कहीं ऊपर है। ये उनके लेखक बनने की राह में पहला बड़ा कदम था।
दूसरा निर्णायक मोड़, जिसकी हमने बात की भी, पिता का परिवार को छोड़ देना जब फ्रैंक लगभग 13 साल के थे।
हाँ, पिता का इंग्लैंड जाना और फिर पैसे ना भेजना, परिवार को यूं छोड़ देना, ये फ्रैंक के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसने जैसे उनके बचपन को खत्म कर दिया। पिता के सुधरने की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई।
अब उन्हें ही घर का बड़ा बनना था। इस घटना ने उनके आगे के इरादों पर क्या असर डाला?
इसने लिमरिक से भागने और अमेरिका जाने के उनके इरादे को और भी पक्का कर दिया। उन्हें ये समझ आ गया कि अगर अपनी जिंदगी बनानी है तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। किसी और पर, खासकर पिता पर, निर्भर रहने का कोई मतलब नहीं। इसने उनमें एक तरह की आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना जगाई, भले ही बहुत कम उम्र में।
और तीसरा है, मूड थोड़ा अलग है, वो सूदखोर मिसेस फिनुकेन के लिए काम करना।
हाँ, ये उनके टीनेज का अनुभव था। जैसा हमने बताया, उनका काम था गरीब पड़ोसियों को धमकी भरे खत लिखना, जो मिसेस फिनुकेन का कर्ज नहीं चुका पाए थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा नैतिक संकट था,
क्योंकि वो खुद उसी गरीबी से जूझ रहे थे और अपनी लिखाई पढ़ाई का इस्तेमाल अपने ही जैसे लोगों को डराने के लिए कर रहे थे।
बन गए थे जिससे वो खुद परेशान थे। इसने उन्हें बहुत शर्मिंदा किया, खुद से नफरत होने लगी, लेकिन साथ ही ये अमेरिका जाने के लिए पैसे जमा करने का एक जरिया भी था।
तो इस अनुभव ने उन्हें कैसे बदला?
इसने उन्हें पैसे का जो भ्रष्ट करने वाला असर होता है और जिंदा रहने के लिए जो नैतिक समझौते करने पड़ते हैं, उसका कड़वा सच सिखाया। ये बहुत दर्दनाक अनुभव था, पर शायद इसने उन्हें इंसानी फितरत की जो पेचीदगियां हैं और दुनिया की जो कठोर सच्चाई है, उसे और गहराई से समझने में मदद की।
हाँ, और बाद में जब मिसेस फिनुकेन की मौत हुई और फ्रैंक ने चुपके से उसके कुछ पैसे ले लिए।
हाँ, वो सिर्फ चोरी नहीं थी शायद, वो एक तरह से उस शोषण का बदला लेने जैसा था और अपनी आजादी की तरफ एक कदम।
ये तीनों ही मोड़ फ्रैंक के बनने में बहुत अहम रहे। अब अगर हम फ्रैंक मैकॉर्ड की जिंदगी से मिलने वाली सीखों के बारे में सोचें, तो क्या मिलता है? उनके संघर्ष और जीत हमें आज क्या सिखा सकते हैं?
मुझे लगता है सबसे पहली और सबसे ताकतवर सीख है हिम्मत ना हारने की, लचीलेपन की, और खास तौर पर कहानी सुनाकर हिम्मत बनाए रखने की। मैकॉर्ड ने अपने भयानक अनुभवों को कड़वाहट या नफरत में नहीं बदलने दिया, उन्होंने उन्हें कहानी में बदला, ज्ञान में बदला, कला में बदला। हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को कैसे देखते हैं, कैसे बताते हैं, यही तय करता है कि हम उनसे कैसे उभरते हैं।
दूसरी अहम सीख शिक्षा की ताकत है, और ये सिर्फ स्कूल वाली शिक्षा नहीं बल्कि खुद से सीखने की भी। लाइब्रेरीमैन का समय बिताना दिखाता है कि ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है और ये आपको आपकी सीमाओं से कितना आगे ले जा सकता है।
और एक बहुत ही मानवीय सीख है पारिवारिक रिश्तों की उलझनों के बारे में। मैकॉर्ड अपने माँ बाप के लिए, खासकर पिता के लिए, बहुत मिलीजुली भावनाएं रखते थे। प्यार भी था, गुस्सा भी, निराशा भी, और शायद थोड़ी हमदर्दी भी। ये हमें सिखाता है कि लोग हमें गहरा दुख भी दे सकते हैं और फिर भी हमारे प्यार और सहानुभूति के हकदार हो सकते हैं।
नफरत में जले बिना अपनी चोटों को मानना और उलझे हुए रिश्तों को समझदारी से देखना, ये एक बड़ी सीख है।
हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ जिंदा रह जाना, खासकर वैसे हालात में, अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत, समझदारी और नैतिक साहस की बात है। हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए।
और आखिर में वही भ्रम के बिना आशा वाली बात, आज की सच्चाई की मुश्किलों को मानते हुए भी बेहतरी की उम्मीद रखना और उसके लिए कोशिश करना, ये आज भी उतना ही जरूरी है।
बिल्कुल, हम आज भी दुनिया में गरीबी, नशे की लत, लोगों का अपनी जगह से उखड़ना, अप्रवासन, ये सब मुद्दे देखते हैं। मैकॉर्ड की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी कितनी है और समाज का ढांचा कितना जिम्मेदार है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर हमें तीन मुख्य बातें निकालनी हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगी?
वो ये है कि प्यार और चोट, वफादारी और निराशा, ये अक्सर पारिवारिक रिश्तों में साथ साथ चलते हैं। फ्रैंक का अपने माँ बाप के लिए जो मिलाजुला रवैया था, वो याद दिलाता है कि इंसानी रिश्ते कभी सीधे सपाट नहीं होते, उन्हें आसान श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ये शायद उन लोगों को थोड़ी तसल्ली दे जो खुद अपने उलझे हुए पारिवारिक रिश्तों से जूझ रहे हैं।
दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि ये कि शिक्षा और पढ़ना लिखना सिर्फ तरक्की के लिए जरूरी साधन ही नहीं है, बल्कि वो जिंदा रहने के लिए जरूरी दिमागी और रूहानी खुराक भी है। फ्रैंक का किताबों और सीखने से जो रिश्ता था, वो दिखाता है कि अगर औपचारिक मौके ना भी मिलें, तो भी ज्ञान की तलाश आपको जिंदगी में मतलब और रास्ता दे सकती है। सीखना हमेशा एक चुनाव है, एक मौका है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो।
और तीसरी एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, असली हिम्मत मुश्किलों से बचने में नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात के बीच, मतलब हास्य और जुड़ाव ढूंढने की काबिलियत पैदा करने में है। फ्रैंक ने अपने सबसे दर्दनाक अनुभवों को ज्ञान, कला और इंसानी समझ का जरिया बना दिया। ये दिखाता है कि हमारे साथ क्या होता है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपनी मुश्किलों की कहानी खुद को और दूसरों को कैसे सुनाते हैं,
क्या हम सिर्फ दुख और तकलीफ पर ही अटके रहते हैं, या हम फ्रैंक मैकॉट की तरह उनमें छुपी विडंबना, हास्य और शायद आगे बढ़ने की ताकत भी ढूंढ पाते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।